ओम शांति। हम एक गीत इस समय सुन रहे थे प्रभु की याद का, और उसके पहले भी हमने थोड़ा रिफ्रेशमेंट एक्सरसाइज किया। अच्छा लगा ना? तो उस समय गीत बज रहा था और उसमें आपने शब्द सुने मेरा बाबा। तो आपको जरूर मन में प्रश्न होगा कि ये बाबा कौन है। तो हम देखते हैं कि जब हम ये मेरापन ईश्वर के लिए महसूस करते हैं, जो हमने देखा कि आत्मा का पिता है, गॉड फादर भी हम कहते हैं, तो उस परमात्मा पिता से जब संबंध की समीपता का अनुभव होता है, तो अंदर से वो एक अधिकार का अनुभव होता है उस संबंध में। और वो मेरापन समीपता का अनुभव जब होता है, तब हम दिल से उनको याद करते हैं, तो मेरा शिव बाबा या मेरा बाबा कहते हैं। तो आप भी जरूर ये अनुभव करना चाहेंगे, ईश्वर से समीपता का अनुभव करना चाहेंगे, जहां ईश्वर के प्रति ऐसा मेरापन आ जाए, अधिकारीपन अनुभव हो, कि वो हमारे जीवन के हर क्षण में, हर कर्म में सदा साथ का अनुभव हमें हो। जब ईश्वर पिता का हर कदम पे साथ का अनुभव होगा, तो क्या होगा जीवन? जीवन कैसे हो जाएगा? परिस्थितियां भी है जीवन में, विघ्न भी है, बहुत सारी बातें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हर कदम पे अगर परमात्मा का साथ होगा, अनुभव होगा वो साथ, तो क्या हो जाएगा जीवन? सहज हो जाएगा। जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं कि छोटा बच्चा भी है, शायद वो एक रास्ता क्रॉस कर रहा है, वहां बहुत ट्रैफिक है, सिटीज में बहुत ट्रैफिक होता है, और उस रास्ते पर क्रॉस करते हुए उस बच्चे को थोड़ा घबराहट होती है, बड़ी बड़ी ट्रक्स देख रहा है, व्हीकल्स आ रहे हैं, स्पीड से आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसके पिता ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, तो क्या हो जाता है बच्चा? अब वही बच्चा वही रास्ते में जब क्रॉस कर रहा है, तो कैसी स्थिति होती है उसकी? घबराहट होती है उसको? नहीं, निश्चिंत हो जाता है। और ही पिता का हाथ तो उसके हाथ में है ही, लेकिन वो अपने आनंद में, अपने मौज में चल रहा है। तो हम देखते हैं कि जैसे जीवन के हर क्षण में बुद्धि से हम उस परमात्मा पिता के साथ का अनुभव करते हैं, तो जीवन की हर परिस्थिति हमारे लिए भी मौज हो जाती है, सुख का अनुभव होता है। हर प्रश्न जो है उसका उत्तर हमारे लिए सामने सहज दिखाई देता है, हर समस्या का भी समाधान महसूस होता है, और हम उस पथ पर चलना आरंभ करते हैं। तो यहाँ राजयोग के द्वारा परमात्मा स्वयं ही अपना परिचय देते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को 100% कौन जानता है? सिर्फ वो स्वयं। हर पहलू उस व्यक्ति के बारे में जो है जानना है, तो वो स्वयं ही बता सकता है। तो इसलिए यहाँ भी परमात्मा स्वयं बैठकर अपना परिचय देते हैं, और उस परिचय को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जब हम ईश्वर पिता को याद करते हैं आज के समय में, तो हम देखते हैं कि हर एक धर्म में, हर एक मान्यताओं में, हर एक ने उस ईश्वर पिता को अपने रूप से बहुत प्यार से, दिल से, श्रद्धा से याद किया है। हर एक धर्म में आत्मा का परिचय अगर हम देखें, तो उसमें सहमति है। जो सुबह का हमारा लेसन था, ब्रिजवन भाई जी ने भी हमें बार बार ये स्मृति दिलाई, अटेंशन दिलाया, कि कैसे अगर हम सारा दिन दिनचर्या में रहते हुए, कारोबार करते हुए, ये अवेयरनेस में है कि हम आत्मा हैं, शांत स्वरूप हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की गुण और शक्तियां जो है, वो हमारे कर्म में, हमारे संबंध संपर्क में प्रयोग होंगी, और हमारे अंदर वो देवताई जीवन की झलक दिखाई देगी। तो हम देखते हैं जहां आत्मा की बात है, वहां हर एक धर्म में, हर एक विचारधारा में इसमें मान्यता है, चाहे उसको आत्मा कहें, शक्ति कहें, रूह कहें, स्पिरिट कहें, सोल कहें, शब्द अलग अलग हैं, लेकिन हर एक ये मानते हैं जरूर कि जरूर इस शरीर को चलाने वाली आध्यात्मिक शक्ति है, और इसलिए उसके बारे में सहमति जो है सहज अनुभव होती है। लेकिन जहां परमात्मा के परिचय की बात आती है, वहां हम देखते हैं कि थोड़ा सा विचारों में अंतर है। भावनाएं बहुत ऊंची है, प्यार हर एक का ईश्वर के प्रति बहुत है, लेकिन विधि जो याद करने की है और बुद्धि में जो स्वरूप है उसमें थोड़ा अंतर है। तो जैसे हम चित्र में देख रहे हैं कि हर एक अपने अपने विचारधारा से, अपने धर्म में, अपनी मान्यताओं से बहुत ईश्वर को प्यार से याद करते हैं। अब जब हम आत्माओं की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं, कहा जाता है कि अनेक मनुष्य आत्माएं हैं। इस समय विश्व की आबादी भी 800 करोड़ के आसपास, शायद उससे ज्यादा ही होगी। तो अनेक मनुष्य आत्माएं हैं, और उन मनुष्य आत्माओं में कई ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने कोई श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तो हम कहते हैं बहुत सारी श्रेष्ठ आत्माएं भी हैं। पुण्य कर्म करने वाली आत्माओं को हम कहते हैं पुण्य आत्माएं हैं। धर्म के कार्य में कोई विशेष योगदान देने वाली आत्माओं को हमने कहा कि अनेक धर्मात्माएं हैं, जिन्होंने धर्म का सच्चा रास्ता हमें दिखाया, जिन्होंने अपने अनुभव के द्वारा हमें दिशा दी। तो धर्मात्माएं भी अनेक है, पुण्य आत्माएं भी अनेक है, महान आत्माएं भी अनेक है, देव आत्माएं भी अनेक है। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, तो देव आत्माएं भी अनेक है। और परमात्मा एक है या अनेक है? परमात्मा के लिए क्या कहेंगे? एक है, क्योंकि ये शब्द जो परम है उसका अर्थ क्या है? जब हम देखते हैं कि सम्मान भी दिया जाता है तो कहते हैं कि भाई परमवीर चक्र इनको दिया जा रहा है, शौर्य के लिए, सम्मान के लिए। तो ये परम शब्द का अर्थ क्या है? हाईएस्ट, ऊंच से ऊंच। तो जब हम परमात्मा कह रहे हैं तो ये परमात्मा ऊंच से ऊंच, वो परम शक्ति का वर्णन हम कर रहे हैं। इसलिए परम आत्मा के लिए कहा जाता है कि परमात्मा एक है। तो वो परम आत्मा जिसको हमने ऊंच से ऊंच कहा, उसमें कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, जिसकी वजह से वो हम सभी आत्माओं में परम है, ऊंच से ऊंच है? तो आज हम उन विशेषताओं के आधार से परमात्मा का परिचय प्राप्त करेंगे। तो पहली विशेषता कहा जाता है कि परमात्मा ऊंच से ऊंच है, सर्वोच्च है। ऊंचा उसका नाम, ऊंचा उसका काम, ऊंचा उसका धाम, तो वो ऊंच से ऊंच गाया हुआ है। दूसरी बात है कि परमात्मा को कहा जाता है कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। इसलिए कभी हम कोई बात में मूंछते भी हैं, कंफ्यूज होते हैं या नहीं जानते हैं, तो हम कहते हैं मुझे नहीं पता, भगवान जाने, कहते हैं गॉड नोस कहते हैं। तो भगवान क्यों जाने, क्यों जाने, वो क्यों जाने, हम क्यों कह देते हैं, साधारण भाषा में कहते हैं, लेकिन उसका क्या रहस्य है? परमात्मा क्यों जाने? क्योंकि परमात्मा को कहा ही गया है कि वो रचयिता है, ज्ञान का सागर है। तो इस सृष्टि की कई बातें, विशेष करके आत्मा के संबंध में जो बातें हैं, उसका ज्ञान परमात्मा ही हमें स्वयं देता है। इसलिए कहा गया है कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला। तीसरा हम देखते हैं कि परमात्मा को कहा गया है सर्वोपरि, सर्व से परे, सर्व प्रकार के बंधन, सर्व प्रकार के प्रभावों से परे, ऊंच से ऊंच, सर्वोपरि। चौथे कारण है कि उनको कहा गया कि वो सर्वोच्च है, इसलिए वो सर्व स्रोत भी है, सर्व गुण और शक्तियों का स्रोत है। और पांचवा जो कारण है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि वो सर्वमान्य है। चलिए हम एक एक बात को थोड़ा और स्पष्ट समझते हैं। पहली बात हम देखते हैं कि परमात्मा को कहा गया सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। क्यों? क्योंकि वो हर गुण और शक्ति का सागर है। आज जब भी हम उनके बारे में वर्णन करते हैं या कंपेयर करते हैं ईश्वर को, तो हम कहते हैं कि वो शांति का सागर है। कोई व्यक्ति में शांति का गुण होगा तो हम कहेंगे इसमें बहुत धैर्यता है, ये बड़ा शांत रहता है। लेकिन हम किसी मनुष्य आत्मा को शांति का सागर कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर माना, सागर की विशेषता क्या है? बेअंत है, बेहद है, अनलिमिटेड है। तो परमात्मा हर गुण और शक्ति में बेअंत है, अनलिमिटेड है, इसलिए वो शांति का सागर है। हर एक आत्मा के लिए उसके पास शांति है, हर समय वो शांति का सागर है। मनुष्य आत्मा तो शांत है, जैसे यहां आप दो दिनों से शांति का अनुभव कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? सभी कर रहे हैं। वातावरण भी हमें बहुत सुंदर मिला है, प्रकृति में भी शीतलता है और यहाँ के वाइब्रेशंस भी शांति के हैं। मेडिटेशन में हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ वापस जाकर जब हम कारोबार में आएंगे, हम फिर से संबंध संपर्क में आएंगे, जिम्मेवारियों का हमें प्रेशर आएगा, परिस्थितियां आएंगी, तो कभी कभी थोड़ी बात में डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी इरिटेट हो जाते होते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो हम सदा शांत नहीं रह पाते। शायद कोई ज्यादा शांत रहता है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर क्षण, हर समय वो अंतर की शांति का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हम शांत स्वरूप हैं, लेकिन परमात्मा शांति का सागर है। तो इसलिए वो सागर के साथ जब हमारा कनेक्शन होगा, तब उस सागर से हमें वो शांति की ऊर्जा जो है, शांति की शक्ति जो है, मिलती रहेगी, जिससे हम फिर हर परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। तो परमात्मा के लिए कहा ही गया है कि वो ऊंच है, क्योंकि वो हर गुण और शक्ति का सागर है, उसकी महिमा जो है वो ऊंच है। अब ईश्वर की जो महिमा है उसकी विशेषता है कि परमात्मा की महिमा कर्तव्य सहित है। वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, क्षमा का सागर है, क्योंकि वो गुण हम उनसे अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं, जैसे ही हम उनको याद करते हैं तो हमारे मन में वो शक्ति, शांति का अनुभव होता है। तो परमात्मा के गुण, विशेषताएं कर्तव्य से जुड़ी हुई है। अब ईश्वर का कौन सा कर्तव्य है जो आपको सबसे प्रिय है, जो आपको बहुत समीप अनुभव होता है, जिसके वजह से आप दिल से उनको याद करते हैं? बहुत सारे कर्तव्य हैं, लेकिन कौन सा कर्तव्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रिय है? जी, स्नेह देता है, स्नेह दाता है, और हम सब उसको बहुत प्यार से याद करते हैं, ईश्वर को। तो उनका कौन सा कर्तव्य हमें प्रिय लगता है, हमें आकर्षित करता है? जी हाँ जी, और भी आवाज सुनेंगे जी। देता है, दाता है, और सुख दाता है, दुख हरता है और सुख दाता है। बहुत बड़ा कर्तव्य है ना, इसलिए हम बहुत प्यार से उसको याद करते हैं। खास कब याद करते हैं, सुख में ज्यादा या दुख में ज्यादा? किस में ज्यादा याद करते हैं? दुख में ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि दुख हरता सुख करता है, गायन भी है ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में करे तो दुख काहे को होए। तो हम उनको उस कर्तव्य सहित याद करते हैं, दुख हरता सुख करता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य ईश्वर का है, जिसके लिए हम प्यार से उनको याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। परमात्मा को कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है पतित पावन। पतित आत्मा को पावन बनाने वाला, प्योरिफायर, शुद्ध बनाने वाला। तो हम देखते हैं ये कर्तव्य भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम स्थूल में तो स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं ना। अब जैसे ये हॉल है, ये भी रोज क्लीन किया जाता है, हमारा घर है, ऑफिस है, रोज क्लीन करवाते हैं ना, करते भी हैं, करवाते भी हैं। शरीर को भी हम रोज क्लीन करते हैं, स्वच्छ करते हैं। मन को लास्ट कब क्लीन किया है, उसको स्वच्छ कब किया है? तो आत्मा का शुद्धिकरण, आत्मा को शुद्ध बनाने वाला पतित पावन। तो हम देखते हैं कि परमात्मा के कई ऐसे कर्तव्य है जिसके कारण हम उनको इतना प्यार से याद करते हैं, वो ऊंच से ऊंच कर्तव्य है। अब हम देखते हैं कि सुखदाता है, हम भी सुख देते हैं, लेकिन सदा सुखदाता नहीं है। कभी कभी हमारे द्वारा भी औरों को दुख मिलता है, मिलता है। कुछ स्वभाव संस्कार, कभी बोल के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हम किसको दुख देते हैं। इसलिए परमात्मा का कर्तव्य ऊंच से ऊंच, इसलिए हम प्यार से उनको याद करते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि उनका धाम भी ऊंचा है। छोटे बच्चों को भी अगर हम पूछे ईश्वर कहाँ रहता है तो क्या बताते हैं? माता पिता सिखाते हैं ना उनको, क्या बताते हैं? ऊपर में रहते हैं। तो हम देखते हैं कि हर एक धर्म में परमात्मा के परिचय और स्वरूप में शायद मान्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन उनके धाम के लिए, उनके रहने के स्थान के लिए कोई अंतर नहीं है। हमारे क्रिश्चियन भाई बहन भी क्या करेंगे, क्या याद करते हैं ईश्वर को? गॉड अबव। हम देखते हैं कि हमारे इस्लाम की मान्यता में हमारे मुस्लिम भाई बहन भी जब नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को कहाँ याद करते हैं? ऊपर में, ऊपर वाला जाने हिंदू धर्म में कहते हैं। तो हम देखते हैं साइंस भी हमें ये बताता है कि सृष्टि में ये तीन वर्ल्ड्स हैं जो हमें ब्रिजवन भाई कह रहे थे, त्रिलोकीनाथ, तीन लोकों का ज्ञान देने वाला परमात्मा त्रिलोकीनाथ। तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो ये थ्री वर्ल्ड्स कौन से हैं? तो फिजिक्स में, साइंस में उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट के आधार से इसको देखा है। तो एक ऐसी सृष्टि है जहां हर एक चीज लाइट के स्पीड के नीचे चलती है, और वो ये साकार लोक है, ये फिजिकल वर्ल्ड, कॉर्पोरियल वर्ल्ड है, यहां हर एक चीज लाइट के स्पीड के नीचे चलती है। अब एक ऐसी सृष्टि है जहां हर एक चीज लाइट के स्पीड के पैरेलल चलती है, समान चलती, उसको कहा जाता है सूक्ष्म लोक। अब वहां लाइट के स्पीड के समान हर चीज चलती है, तो वहां आवाज होगा, साउंड होगा, क्योंकि साउंड की स्पीड तो उससे कम है, तो वहां आवाज नहीं है। वो फरिश्तों की दुनिया, एंजेलिक वर्ल्ड कहलाता है, जिसको हम सूक्ष्म लोक कहते हैं। और एक ऐसी दुनिया है, साइंस कहता है, जिसको कहा जाता है सुपर ल्यूमिनस वर्ल्ड, जहां हर एक चीज लाइट के स्पीड के बियॉन्ड चलती है, उसको कहा जाता है परम धाम। हम ब्रह्म महातत्व के रूप में याद करते हैं शास्त्रों में, सभी धामों से परे। अब लाइट के स्पीड से बियॉन्ड, तो वहां क्या नहीं होगा? आवाज भी नहीं है, मूवमेंट भी नहीं है, समय भी नहीं है। तो वो सृष्टि जो है परम धाम, जहां परमात्मा का निवास स्थान है, सुपर ल्यूमिनस वर्ल्ड, आत्माओं की भी दुनिया है, आत्मा का भी निज धाम है। तो आत्मा भी जो है सुपर ल्यूमिनस बीइंग है, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस। तो अगर हम देखते हैं कि बचपन की कोई बात आपको याद आती है, याद आती है? कोई ऐसा प्रसंग हो छोटेपन में, बचपन में, जो आपके मन में याद रह गया है? हैं ऐसी बातें? हैं बचपन में हमारे फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ है बातें? तो हम एक क्षण में मन से बचपन में चले जाते हैं, जाते हैं ना। शरीर जा सकता है? शरीर जा सकता है? आत्मा तो मन के द्वारा पहुंच गई बचपन में, शरीर जा सकता है? नहीं, शरीर तत्वों का बना हुआ, इसलिए इसको बंधन है, ये इस साकार दुनिया का है। लेकिन आत्मा जो है वो सुपर ल्यूमिनस बीइंग है, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड टाइम। इसलिए आत्मा जो है वो संकल्पों के द्वारा पास्ट में भी जाती है, हम संकल्पों के द्वारा घर में भी जाते हैं, सुबह भी मैंने आपको पूछा था कि परिवार को याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ऑफिस को याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, है ना? तो हम मन के द्वारा वहां पहुंचते हैं स्थान पर, स्पेस के बियॉन्ड। मेडिटेशन में हम राजयोग का अभ्यास करेंगे तो हम मन बुद्धि से उस परम धाम में पहुंचेंगे और परमात्मा से वहां प्रभु मिलन का आनंद लेंगे। तो जैसे यहां बैठकर आप अपने घर में पहुंचते हैं, वैसे हम मन बुद्धि के द्वारा इस दुनिया के पार वो परम धाम जो आत्माओं का घर है, परमात्मा का घर है, वहां मन बुद्धि से पहुंचते हैं। इसलिए हमने पहली बात देखी कि परमात्मा ऊंच है, सर्वोच्च है, ऊंचा उसका नाम, ऊंचा उसका काम, ऊंचा उसका धाम। इसलिए जो भी रिसर्च साइंस करता है वह ऊपर की ओर है। इस धरनी के अंदर क्या है, ग्लोब के अंदर क्या है, सृष्टि में धरनी के अंदर क्या है, सिर्फ तत्व है, धातु है, मैटर है। जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी रिसर्च साइंस करता है वो बियॉन्ड, क्योंकि परमात्मा का भी घर इस सृष्टि से पार, पांच तत्वों की दुनिया से पार, स्पेस से भी पार, वो शांति की दुनिया है जिसका स्वरूप, इसलिए हम रेड लाइट ऑन करते हैं मेडिटेशन में, उसका स्वरूप सोनेरी लाल प्रकाश का महातत्व है, क्योंकि आत्मा भी बिंदु स्वरूप, लाइट स्वरूप है। तो वो घर जो आत्माओं का है उसका स्वरूप भी सोनेरी लाल प्रकाश का है। अब दूसरी बात हम देखते हैं, हमने पहली बात देखी थी कि वो सर्वोच्च है, दूसरी बात हम देखते हैं कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला। अब वो क्यों सब कुछ जानता है, क्योंकि वो सृष्टि का रचयिता है। जैसे आप माता पिता हैं, तो बचपन से ही आपके बच्चों की जब एजुकेशन शुरू की आपने, तो चाहे कोई भी क्लासेस में गए, चाहे स्कूल में गए, अगर टीचर को कुछ उस बच्चे के बारे में पूछना है, उसके प्रोग्रेस के बारे में कुछ गाइड करना है, तो किसको बुलाते हैं, किसको बुलाएंगे, पेरेंट्स को बुलाएंगे। आपके नेबर को नहीं बुलाएंगे, नहीं नहीं बुलाएंगे, उस बच्चे के आंटी अंकल को नहीं बुलाएंगे, नहीं, मम्मी डैडी को बुलाएंगे। क्यों, बच्चे के माता पिता को ही क्यों बुलाते, क्योंकि बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी किसके पास होगी, माता पिता, क्योंकि वो रचयिता है। कोई भी सुंदर, हम सुंदर पेंटिंग देखते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है, हमारे मन में कुछ संकल्प हो सकता है कि पेंटिंग इसको देखकर बनाया होगा, ये इसमें दृश्य दिखाया है, इसमें ये रंग प्रयोग किया है, लेकिन वो पेंटिंग के बारे में 100% जो जानकारी है, सत्य ज्ञान, वो किसके पास होगा, रचयिता, पेंटर के पास होगा। तो परमात्मा को भी रचयिता कहा है, इसलिए ये सृष्टि की रचना और स्वयं रचयिता का ज्ञान वो हमें देता है। तो इसलिए कहा गया है कि वो ज्ञान का सागर है और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला, क्योंकि वो आकर हमको ये नॉलेज देता है। तीसरी बात कहा गया कि वो सर्वोपरि है, वो सर्व बंधनों से और प्रभावों से परे है। इसलिए गीता में लिखा गया है, परमात्मा ने अपना परिचय जब दिया है तो कहा है कि मैं अजन्मा हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। अब परमात्मा ने अपना परिचय दिया है। अब जब हम कहते हैं कि वो सर्व बंधनों से परे हैं, तो कौन से बंधनों से परे हैं? अब कोई फिजिकल बॉन्डेज है उसमें तो हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं उससे फ्री करने के लिए, लेकिन आत्मा के पास भी कुछ बंधन है। पहला बंधन जो आत्मा को है इस शरीर के साथ है, ये शरीर के साथ हमारा एक संबंध भी है और एक बंधन भी है। बंधन कौन सा है? आत्मा ने जैसे ये शरीर में प्रवेश किया तो उसको हमने जन्म कहा। अब जन्म के बाद इस जीवन यात्रा का अंत का समय क्या होगा? जब आत्मा को ये शरीर छोड़ना है। तो जन्म होते ही मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, कभी ना कभी छोड़ना है। चाहे कोई अकाले मृत्यु हो जाती है, बचपन में ही कोई शरीर छोड़ देते हैं, कोई 100 वर्ष के ऊपर भी दीर्घायु रहती है, लेकिन आत्मा को शरीर को तो छोड़ना है। तो जन्म और मृत्यु इस साइकिल में आत्मा आती है। अब जन्म लिया, शरीर में प्रवेश किया तो शरीर के द्वारा कर्म भी करना है, तो कर्म और कर्म का फल ये भी एक साइकिल है, ये भी एक बंधन है। कर्म करना है तो कर्म का फल भी स्वीकार करना है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो हमें उसका फल स्वीकार करना है। अब कुछ कर्म हमारे बहुत सुंदर हैं, श्रेष्ठ हैं, पुण्य कर्म है, तो जो श्रेष्ठ कर्म है उसका फल क्या मिलता है हमें, क्या मिलता है? हम सुख देते हैं, कोई पुण्य कर्म करते हैं, मदद करते हैं, उसका कर्म का फल हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है, खुशी मिलती है, मनोबल मिलता है, दुआएं मिलती है। तो कर्म और फल, सुख और जो कर्म हमारे इतने श्रेष्ठ नहीं हैं, कुछ कुछ ऐसे कर्म हमसे हो जाते हैं जब हम थोड़ा क्रोध के वश कुछ विकर्म कर लेते हैं, बोल देते हैं, व्यवहार गलत कर लेते हैं, ईर्ष्या के वश, अहम भाव के वश, तो ऐसे कर्म का फल हमें क्या मिलता है? दुख। तो आत्मा को कर्म और फल, दुख और सुख, ये इन्फ्लुएंस में कहो या बंधन में कहो या बॉन्डेज में कहो, आत्मा को आना है। परमात्मा ये कर्म बंधन से न्यारा है, वो जन्म और मरण के चक्र से न्यारा है। क्यों न्यारा है? परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिवान है, गुण और शक्तियों का स्रोत है। अब जैसे ही हम देखते हैं कि साइंस में एक दूसरा लॉ है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ एंट्रोपी। लॉ ऑफ एंट्रोपी थोड़ा शब्द कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन वास्तव में बहुत सहज है। ये लॉ यही कहता है कि कोई भी सिस्टम है, जब वो सिस्टम संपूर्ण रूप से ऊर्जावान है और वो सिस्टम को हम यूज करते हैं, तो धीरे धीरे जैसे प्रयोग होता जाता है वो सिस्टम की ऊर्जा घटती जाती है, और जब वो सिस्टम की ऊर्जा जीरो के समान, जीरो के समीप आ जाती है, संपूर्ण रूप से वो सिस्टम समाप्त हो रहा है उसकी ऊर्जा, तब हमें संकेत मिलता है कि अब उस ऊर्जा को फिर से क्या करना है, सिस्टम को फिर से रिजुविनेट करना है, नेगेंथ्रोपी करना है। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? साइंस कहता है कि उसी सिस्टम को फिर से अगर आपको रिजुविनेट करना है तो उस सिस्टम को एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ना होगा। ये है साइंस कहता है, ये इसी के आधार से हम देखते हैं मोबाइल चलता है हमारा, है ना, यूज करते हैं जब चार्ज्ड है, लेकिन जैसे यूज करते जाते हैं क्या होता है, क्या होता है, जितना ज्यादा महंगा और और सारे एप्स होंगे मोबाइल में उतना क्या होता है। जब हमारा पहले वाला वो मोबाइल होता था नोकिया वाला विदाउट एप्स, क्या होता था, पूरा दिन चलता था, नहीं, कभी कभी अगर कम कॉन्वर्सेशन हुए तो दूसरे दिन भी चार्ज रहता था, और अभी क्या होता है, जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होता है ना। तो हम देखते हैं वो सिस्टम है कि जैसे डिस्चार्ज होता है थोड़ा 5% 10% कहां कहां 15%, तो क्या मैसेज आता है हमें कि आपको इससे कनेक्ट करना है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से। अब हम देखते हैं कि हमने जैसे कल आज सुबह को आत्मा के बारे में सुना, अभी भी हमें ब्रिजवन भाई ने बताया, तो हम देखते हैं कि आत्मा की ऊर्जा जो है, जो ओरिजिनली 100% थी, इस समय क्या है, कम हो गई, सोल पावर कम हो गई है। अब इसको हमें रिचार्ज करना है तो क्या करना होगा, इसको भी यही लॉ अप्लाई करेगा कि हमें वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ना होगा। हम स्वयं जब एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं तो एक आत्मा दूसरी आत्मा को कुछ समय के लिए सहयोग दे सकती है। जैसे मोबाइल में भी अगर आपको कुछ काम करना है लेकिन आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, कुछ आपको प्रॉब्लम है, लैपटॉप में भी कुछ है, तो फिर आप आपके मित्र को कहते हैं भाई थोड़ा मुझे आप हॉटस्पॉट दे दो तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं कहते हैं ना, तो थोड़ा सहयोग हम देते हैं लेकिन उस मोबाइल को रिचार्ज दूसरा मोबाइल नहीं कर सकता है। ऐसे ही हम आत्माएं कुछ समय के लिए स्नेह और सहयोग दे सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के अंतर की जो शक्तियां हैं वो संपूर्ण रूप से 100% अपने अंदर जो हमें अनुभव करना है, भरना है, उसको रीचार्ज करना है, उसके लिए हमें वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ना होगा। तो वो एक विशेष आत्मा, परमात्मा है, जो इस साइकिल में नहीं आती है। क्योंकि अगर इस साइकिल में आए तो सभी आत्माएं साइकिल में आकर क्या होगी, धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाएगी। इसलिए वो एक परमात्मा, एक ऐसी विशेष आत्मा, एक ऐसा विशेष उनका कर्तव्य है कि जब हम सब मनुष्य आत्माओं की ऊर्जा डिस्चार्ज हो जाती है, हमारे अंदर की शांति जो है, हमारे अंदर का प्यार जो है, हमारे अंदर की आंतरिक शक्तियां जो है, हमारे अंदर की खुशी जो है, जो अंतर की थी, वो जब डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको संपूर्ण रूप से फिर से रिचार्ज करने के लिए वो स्रोत जो है वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए आता है। तो इसलिए वो एक ऐसा विशेष कर्तव्य है हमें फिर से रिचार्ज करने के लिए, वो इस साइकिल में नहीं आता है। इसलिए गायन किया गया है कि वो अजन्मा है, मनुष्य समान जन्म और मरण के चक्र में नहीं आता है, अकर्ता है। मनुष्य के समान कर्म करे और कर्म का फल भोगना पड़े, सुख दुख का अनुभव करना पड़े, वो उस अकर्ता है, अभोगता है, सुख दाता है, दुख हरता है, सुख दाता है। वो इस साइकिल से बियॉन्ड है और इसलिए वो ये विशेष कर्तव्य करता है जहां हम सभी आत्माओं को फिर से हमारी अंतर की शक्तियों को जागृत करने के लिए, उनको भरने के लिए हमें मदद करता है, हमें अंदर से संपूर्ण रूप से पवित्र बनाता है, मन बुद्धि संस्कार तीनों का शुद्धिकरण करता है। तो इसलिए परमात्मा का ये विशेष रोल है। इसलिए हमने देखा कि वो सर्वोपरि है, वो बियॉन्ड है इन साइकिल से, इस देह की दुनिया से भी बियॉन्ड है। चौथी बात जो हमने देखी, वो सर्व गुण और शक्तियों का स्रोत है, सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है। तो हम देखते हैं कि फिजिकल शरीर जो है, हमारी जो जरूरतें हैं, संबंध है, कारोबार है, जो भी हमारी जरूरतें हैं, वो ये देह की दुनिया में पूरी हो जाती। जैसे यहां तो आपको गर्मी नहीं लगती है ना, यहां तो एनवायरमेंट ही नेचुरल एसी है, लेकिन जहां भी हम सिटी में आते हैं, जैसे मैं बॉम्बे से हूं तो वहां बहुत गर्मी होती है। तो जैसे गर्मी होती है हम एसी ऑन कर लेते हैं तो क्या होता है, ठंडक मिलती है, नहीं? तो ये शरीर को जो आवश्यकता है कंफर्ट की, सहयोग की, वो हमें इस सृष्टि पर प्राप्त है। लेकिन जब मन अंदर से क्रोधित है, अंदर से परेशान है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत इरिटेशन हो रहा है, तब मन को शांत एसी कर सकता है, एसी कर सकता है, कर सकता है नहीं, एसी में रहकर भी बहुत गुस्सा आता है ना। तो हम देखते हैं वो एसी मन को शांत नहीं कर पाता है। आत्मा के हर गुण और शक्ति का स्रोत परमात्मा है, और वो कैसा स्रोत है, सागर है और सदा उपस्थित है, ऑलवेज अवेलेबल, हर पल हर क्षण वो हमारे लिए उपस्थित है, एट आवर सर्विस। तो इसलिए हम देखते हैं कि उस स्रोत से हमारा कनेक्शन होना बहुत आवश्यक है। और पांचवी बात जो सबसे सुंदर है कि परमात्मा सर्वमान्य है, और ये बात हम बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। हम हर धर्म की यात्रा आज हम करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे हर एक धर्म पिता ने बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से और बहुत दृढ़ता से, स्नेह से, अपने अनुभव से हमें उस स्रोत के साथ कनेक्ट किया है। जैसे हम देखते हैं क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट ने बहुत प्यार से हमें कहा कि रिमेंबर गॉड फादर, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का संदेश लाया हूं। कौन सा संदेश लाया हूं, प्यार का, शांति का संदेश लाया हूं। जब क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया गया अंत के समय पर, तब भी उन्होंने ईश्वर से क्या मांगा, ईश्वर से क्या प्रार्थना की, उन्होंने कहा ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू, हे ईश्वर इनको माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने ईश्वर को बहुत प्यार से कहा कि आप तो क्षमा के सागर हो, आप इनको माफ कर देना। जब भी वो हीलिंग करते थे, बहुत सारे बाइबल में अनुभव हैं हीलिंग के, तो वो बहुत प्यार से कहते थे, आई टच आई प्रे गॉड हील्स, ईश्वर तुम्हें बहुत प्यार से हील करता है। उन्होंने ईश्वर को भी बहुत प्यार से कहा, गॉड इज काइंडली लाइट, इसलिए वो स्नेक की ज्योति के रूप में कैंडल हम चर्च में देखते हैं। तो उन्होंने भी हमें उस गॉड फादर के तरफ इशारा किया। गुरु नानक जी ने भी बहुत प्यार से परमात्मा की बहुत वंदना की, उनकी महिमा की, कहा एक ओंकार निराकार निर्वैर सत श्री अकाल। वो एक है, वो निराकार है, निराकार अर्थात जिसका शरीर रूपी आकार नहीं है, वो निराकार आत्मा का पिता है, निर्वैर जिसका किसी के साथ वैर नहीं, सत श्री अकाल सत्य है, श्री है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ अकाल मूरत। तो आत्मा भी अकाल है अविनाशी, परमात्मा भी अकाल, तो उसके तरफ इशारा किया। और जो ज्ञान उनको उनसे मिला उसको महत्व दिया, उसको गुरु के रूप में रखा, गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में जिसमें ज्ञान जो ईश्वर का है। फिर हम देखते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई बहन भी बहुत प्यार से कहते हैं नूरे इलाही, नूर अर्थात नूर का अर्थ है रोशनी लाइट, जो नूर है जो आत्मा का पिता है अल्लाह, नूरे इलाही को याद करना है। फिर हम देखते हैं ज्यूश धर्म में भी मोसेस ने बर्निंग बुश के रूप में साक्षात्कार किया, वृक्ष के रूप में जेहोवा, जेहोवा अर्थात इटर्नल लाइट, जिससे उन्हें प्रेरणा मिली और वो टेन कमांडमेंट्स जो विशेष ग्रंथ है वो लिखा गया, उन्होंने भी उनको लाइट के रूप में याद किया है। फिर हम देखते हैं कि हमारे जो भी धर्म गुरु भी होके गए हैं तो हरेक ने ईश्वर को बहुत प्यार से याद किया है। हम देखते हैं बुद्ध, गौतम बुद्ध जी ने भी बहुत प्यार से तपस्या की, हमेशा उनका स्वरूप आप देखो तपस्या में है, वो तप कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं, उस परमात्मा को याद कर रहे हैं जिससे उनको ज्ञान का बोध हुआ और उन्होंने हमें कर्मों के बहुत श्रेष्ठ पथ बताया। फिर हम देखते हैं कि महावीर स्वामी जी, जैन धर्म में भी हम देखते हैं 24 तीर्थंकर जो हुए हैं, तो हरेक स्वरूप में हम देखते हैं कि वो तपस्या में लीन है, मस्तक के मध्य में वो सुंदर लाइट चमक रही, आत्मिक स्मृति में है और उस परम परमात्मा परम पिता की याद में समाये हुए हैं। उनके लिए भी, महावीर स्वामी जी के लिए भी गायन है कि कितना उन्होंने तप किया, 12 वर्ष उन्होंने तपस्या की, तब जाकर उनको ये ज्ञान का बोध हुआ और उन्होंने बहुत सुंदर अहिंसा का पथ दिखाया। तो हम देखते हैं कि हर एक धर्म में, हमारे पारसी भाई बहन भी याद करते हैं तो वहां भी फायर टेंपल अग्नि उनका स्वरूप दिखाया हुआ है जहां ईश्वर को याद करते हैं। एक और धर्म है जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं का गायन है, 33 करोड़ है ना हिंदू धर्म में, तो यहाँ 33 करोड़ जो देवताएं हैं उनका साकार स्वरूप है देवताओं का, लेकिन यहाँ भी एक निराकार स्वरूप का गायन है। और वो कौन सा गायन है निराकार स्वरूप का ईश्वर का, शिवलिंग के रूप में लिंग स्वरूप का गायन है। और अगर हम देखते हैं कि वो जो ज्योतिर्लिंगम है, 12 ज्योतिर्लिंगम जो विशेष भारत के गाये हुए हैं, उसमें हर एक नाम जो है मंदिर का उसमें या तो नाथ है या ईश्वर अंतिम शब्द, सोमनाथ रामेश्वरम, तो हर नाम जो है ईश्वर के कर्तव्य के अर्थ है। सोमनाथ कहा तो ज्ञान का सोम रस देकर हमें नया जीवन देने वाला नाथ, क्योंकि सोम रस अर्थात नेक्टर, तो शास्त्रों में गायन है कि जैसे अमृत दिया गया तो जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी उसको जीवन दान मिला। तो आज जैसे हमें बता रहे थे ब्रिजमोहन भाई, आज जीवन में हमारे अंतर की खुशी नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, तो जहां खुशी नहीं है उमंग उत्साह नहीं है वो जीवन कैसा, जी तो रहे हैं लेकिन एक सुख का अनुभव नहीं है। तो ऐसा मृत्यु समान जीवन, चिंता में जो व्यक्ति है परेशान है उसका जीवन कैसा है, जो मृत्यु के समान जीवन को नया जीवन देने वाला, ज्ञान से एक नई समझ, एक नया दृष्टिकोण। तो परमात्मा हमें वो ज्ञान दे रहा है जिससे, जिस सोम रस से हमारे जीवन को नई दिशा मिलती है। हम अपने आप को एक आत्मिक रूप में महसूस करते हैं, आत्मिक शक्ति के रूप में महसूस करते हैं। तो ज्ञान का सोम रस देने वाला सोमनाथ, रामेश्वरम, जहां देवी देवताओं का भी गायन है कि उन्होंने भी उस निराकार ईश्वर की पूजा की, उसको याद किया। अमरनाथ, हमें अमर बनाने वाला नाथ। अमर कैसे बनाता है? तो शरीर की तो मृत्यु होती है, लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो क्या हो जाता है? आत्मा कैसी है? हमने सुना कि आत्मा क्या है? अविनाशी है, अमर है, अजड़ है। तो जब मैं आत्मिक श्रुति में हूं तो मृत्यु का भय नहीं है। हम रोज उस मृत्यु के भय से नहीं मर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी के कारण भी कहीं ना कहीं शरीर छोड़ना पड़ा, लेकिन उनके शरीर छोड़ने का भी जो अनुभव है वो बहुत सुखदायी, क्योंकि भय नहीं था, मृत्यु का कोई भय नहीं था। बहुत खुशी से, शांति से शरीर का त्याग किया। शरीर छोड़ने के पहले अपनी जिम्मेवारी भी सौंपती और बहुत प्यार से, शांति से शरीर छोड़ा। न उन्हें मृत्यु का भय, न परिवार वालों को मृत्यु का भय। तो उस रूप में हमें अमर आत्मा की का ज्ञान देकर, जीवन में रहते हुए उस अमर अनुभव में रहने वाला, कराने वाला, उस अमर आत्मा की स्मृति में जब हम रहते हैं तो जीवन में रहते हुए भी भय से मुक्त होते हैं। तो ऐसा ज्ञान देकर, ऐसी अनुभूति, ऐसी समझ देने वाला वो अमरनाथ। फिर हम देखते हैं बॉम्बे में टेंपल बाबुलनाथ। तो बबुल जो है वृक्ष है, बहुत हमें यूजफुल भी है दातून के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, है ना? देखा है आपने कभी? बहुत कांटे होते हैं। तो ऐसे स्वभाव संस्कार जो हमारा बन गया है, बन गया है, थोड़ा थोड़ा हम दुख देते हैं ना सुबह से रात तक, कोई ना कोई रूप से। कभी परिवार में कुछ विचारों में अंतर हो जाता है, कभी कारोबार में भी कुछ बातों में हम थोड़ा अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, कुछ व्यवहार ठीक नहीं करते हैं। तो आपस में जो दुख की लेन देन है, तो उसका कारण क्या है? हमारे कहीं ना कहीं संस्कार नेगेटिव हो गए हैं। तो कांटों को फूल बनाने वाला, फूल कब हम देते हैं किसी को? फूल कब देते हैं? जब खुशी होती है, कोई खुशी का प्रसंग है, कोई बीमार है उसको खुशी में हमें लाना है तो हम फूल देते हैं। फूल देखकर ही हमें खुशी होती है, सुख देने वाले हैं फूल। तो ऐसे कांटों से फूल समान हमारा स्वभाव संस्कार बनाने वाला बाबुलनाथ। तो हम देखते हैं कि अलग अलग नाम है। अब आत्मा और परमात्मा दोनों में स्वरूप में समानता है। जैसे आजकल बच्चे और पिता क्या करते हैं? ट्विनिंग करते हैं ना, कोई ड्रेस पहनेंगे एक जैसा, नहीं? जो कोशिश करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, ताकि अंतर भी दिखाई न दे, कम हो। मित्र जैसे संबंध भी ऐसा फ्रेंडली रखते हैं ताकि फ्रेंडली संबंध में एक जैसे लगे, आत्मिक स्नेह हो, बॉन्डिंग अच्छा हो। तो परमात्मा हमें अपना परिचय देते हैं कि मैं आत्मा का पिता हूं, इसलिए मेरा भी स्वरूप कैसा है? जैसे आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, ऐसे परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। आत्मा निराकार तो आत्मा का पिता भी निराकार। जैसे अभी हम शरीरधारी हैं, ये शरीर हमने स्वीकार किया, हम सारा दिन कारोबार करते हैं शरीर के साथ, ये शरीर का मात पिता कैसे होंगे? शरीर के पिता मात पिता कैसे होंगे? शरीरधारी होंगे, मनुष्य होंगे? कोई जानवर है तो सपोज अगर हाथी है तो उसका मात पिता कैसे होगा? घोड़ा होगा? होगा नहीं, हाथी होगा। अच्छा, तो बच्चा और मात पिता दोनों का स्वरूप समान। ऐसे मैं आत्मा हूं तो आत्मा का पिता भी कैसे होगा? स्वरूप में समान, वो भी परम आत्मा है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो परमात्मा आकर ही हमें परिचय देते हैं कि जैसे तुम आत्मा बिंदु स्वरूप हो वैसे मैं परमात्मा भी बिंदु स्वरूप हूँ। लेकिन परमात्मा जो है बिंदु स्वरूप होते हुए भी हर गुण और शक्ति का सिंधु स्वरूप है, सागर के समान है। अब शिव बाबा परमात्मा सागर है शांति का और मैं आत्मा उसकी संतान शांत स्वरूप हूँ। तो हम देखते हैं कि सागर समान जो परमात्मा है वो आकर जब अपना परिचय हमें देते हैं तो अपना नाम बताते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मेरा नाम शिव है, सदा शिव। हम यहाँ बहुत प्यार से उनको शिव बाबा कहते हैं, बाबा शब्द अर्थात पिता। अब शिव शब्द भी संस्कृत का शब्द है, तो संस्कृत में शिव शब्द का अर्थ क्या है? पहला अर्थ है बिंदु। इसलिए कई बार पुराने समय में जब अकाउंट्स लिखते थे तो कहते थे डालो शिव, शिव डालो माना बिंदु डालो। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है शिव अर्थात कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाला, सबको सहयोग देने वाला, सबको प्यार देने वाला, सबकी सदगति करने वाला, सर्व का कल्याणकारी पिता। तो शिव का अर्थ ही कल्याणकारी। और तीसरा अर्थ है बीज, सीड, रचयिता। तो इस एक शब्द में परमात्मा का स्वरूप भी आ जाता है, उसका हमारे साथ संबंध, वो रचयिता है, बीज है इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का, और तीसरा वो कल्याणकारी पिता है, सर्व आत्माओं का कल्याणकारी पिता। इसलिए परमात्मा का नाम यहाँ शिव, जो स्वयं ही उन्होंने बताया है। और जब हम उनको प्यार से याद करते हैं तो वो तो पिता है, जैसे हम देखते हैं कि अपने देह के पिता हैं। तो भले कोई आप में से बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप बहुत बड़े अपने संस्था के MD हैं या कोई भी पोजीशन पर होंगे, लेकिन आपका बच्चा आपको क्या कहेगा? बेटा या बेटी क्या कहेगी? क्या कहेंगे? डैड, फादर, पिता, बाबा। प्यार से कहेंगे, भले आप कोई भी पोजीशन में हो, लेकिन वो आपको उस पोजीशन से थोड़ी कहेंगे, क्योंकि आप उनके लिए कौन हो? डैडी हो, पिता हो। तो ईश्वर विश्व का रचयिता है, विश्व का पालनहार है, सारे विश्व का हम कहेंगे रखवाला है, सारे विश्व का सर्वशक्तिवान है, विश्व को पावन बनाने वाला पति पावन। लेकिन हमारा कौन है? आत्मा का कौन है? पिता है। इसलिए हम उस समीप संबंध से उनको बाबा कहते हैं, पिता कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे फाउंडर जो हैं, जिनका चित्र यहाँ देखते हैं, मेडिटेशन रूम में भी आप देखते हैं, ब्रह्मा बाबा जिसको कहते हैं, तो उनका भी परिचय आपको प्राप्त होगा सेशन में। और वो कैसे निमित्त बने, परमात्मा ने उनको कैसे निमित्त बनाया इस कार्य के लिए, उसका भी बहुत सुंदर उसकी कहानी, जीवन कहानी और रहस्य सुनेंगे। लेकिन उनको जब हम याद करते हैं तो उनके बारे में हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा। लेकिन जब हम सिर्फ बाबा शब्द, आप कई लोगों से यहाँ जो हमारे सेवाधारी हैं या समर्पित भाई बहन हैं, हमारे भी कभी इंटरेक्शन में मुख से निकल जाता है बाबा, बाबा बैठा है नहीं, तो ये बाबा शब्द गीत में भी हमने सुना, मेरा बाबा। तो जब हम ये बाबा शब्द कह रहे हैं तो वो परमात्मा के लिए कह रहे हैं, शिव बाबा के लिए कह रहे हैं, उस निराकार परमात्मा के लिए कह रहे हैं जो आत्मा का पिता है और वो आत्मा के सबसे समीप है। अब उस पिता से हमारा संबंध कैसा है? संबंध कैसा है? बहुत समीप संबंध है। लेकिन क्या हम आज उस संबंध से, उस समीपता से उनको याद करते हैं, उस समीपता को अनुभव करते हैं? जैसे आज देखिए कि कोई हमारे पिता अगर हो, या कोई अगर पिता भी नहीं हो, हमारे कोई अच्छे फ्रेंड हो जो हमारे वहां के सिटी के, डिस्ट्रिक्ट के कोई अच्छे पद पर है, जैसे बता रहे थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, या कोई वहां के पुलिस ऑफिसर हैं, कमिश्नर हैं, और आपका उससे बहुत समीप संबंध है, एकदम फैमिली जैसे निजी संबंध, आपका बहुत अच्छा मित्र है, बहुत समीप संबंध है, तो किसी को भी अगर कभी कोई काम होता है, कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो उनको कहते हैं अरे क्यों टेंशन लेते हो, वो मेरा मित्र है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मैं आपकी मीटिंग करा दूंगा। कहते हैं ना, आपका कोई काम फंसा हुआ है, अरे वो मेरा मित्र है, मैं आपको अभी मिला दूंगा, कहते हैं अथॉरिटी से। हम भगवान के लिए किसी के लिए को कह सकते हैं कि वो मेरा मित्र है, आपको कोई काम है तो मैं आपको मिला दूंगा, मैं आपको कार्य करा दूंगा। वो समीपता का अनुभव, तो यहाँ शिव बाबा हमें अपने साथ उस समीप संबंध में बांधते हैं। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि बहुत प्यार से जब हम उनको इस परिचय से याद करते हैं तो परमात्मा का वो असीम प्यार और शक्तियां हम अनुभव करते हैं। साइंस ये कहता है कि व्हेन टू एनर्जीज मीट, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम जी हायर टू लोअर। तो जैसे ही हम राजयोग के अभ्यास में मन बुद्धि को उस परमात्मा से जोड़ेंगे तो क्या होगा, उस हायर एनर्जी से, उस शक्ति के स्रोत से, सर्वशक्तिवान से शक्ति की किरणें मुझ आत्मा में समाएंगी। वो प्यार के सागर से, वो प्यार के प्रकंपन जो हैं, वाइब्रेशंस जो हैं, वो हमारे अंदर समाएंगे। तो जैसे मुझ आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा से होता है, ऑटोमेटिकली वो एनर्जी हमारे अंदर भरती जाती। अब जैसे हमने मोबाइल चार्ज किया तो हमने क्या किया, मोबाइल चार्जर से कनेक्ट करके वो चार्जर को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल सोर्स में डाला। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिकल सोर्स में डाला तो वो चार्जर में दो पिन होते हैं ना, जिसको आप डालते हैं। ऐसे ही यहां जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मन और बुद्धि वो दो पिन है जिसको हम उस सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। मन क्या करता है, हमने आज सुबह सुना, मन क्या करता है, मन सोचता है और बुद्धि क्या करती है, निर्णय लेती है। तो मन आत्मा के लिए मुख का काम करता है, बातचीत करना है ना, तो मन से हम ईश्वर से बातचीत करते हैं, हम अपने संकल्पों की भाषा से उनसे बात करते हैं। तो मन हमारा मुख है और बुद्धि क्या है, नेत्र का काम करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं आपको देख रही हूं, आप कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो आप मुझे देख रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो राजयोग का अभ्यास से ईश्वर के साथ बातचीत करना, उस सुंदर मिलन का अनुभव करना। अब यहां बातचीत कैसे हो रही है, शब्दों से, और हम कैसे एक दूसरे को देख रहे हैं, नेत्रों से, क्योंकि स्थूल रूप से हम मिलन मना रहे हैं। अब परमात्मा तो आत्मा का पिता है तो ये मिलन तो कैसा होगा, रूहानी मिलन है, आत्मिक मिलन है। तो यहां हमारा मन हमारा बातचीत करने का माध्यम बनेगा और भाषा कौन सी होगी, संकल्पों की भाषा, थॉट्स के द्वारा हम उनके साथ बातचीत करेंगे। और कैसे देखेंगे उनको, ईश्वर को कैसे देखेंगे, ये स्थूल नेत्र से तो हम सिर्फ तत्वों को देख सकते हैं, ऊर्जा को तो वैसे ही नहीं देख सकते। अब वो तो सुप्रीम ऊर्जा है, वो तो आत्मा का पिता है, तो स्थूल नेत्र से हम आत्मा को भी नहीं देखते हैं तो परमात्मा को भी स्थूल नेत्र से नहीं देख सकेंगे। कौन से नेत्र से देखेंगे, बुद्धि रूपी नेत्र से। तो जब हम मन से उनके साथ उस चिंतन के द्वारा, उस शुद्ध चिंतन से, प्यार से बातचीत करना आरंभ करेंगे और बुद्धि से उस सुप्रीम लाइट को देखते जाएंगे तो परमात्मा के साथ वो समीप संबंध का अनुभव होगा। हर पल उस संबंध के द्वारा आप अपने जीवन के हर कार्य को सहज बना सकते हैं। यहाँ हमारे पास जो भी सेवा में आप आसपास देखते हैं, यहाँ हर एक हॉल में, डाइनिंग हॉल में, जहां भी आप संपर्क में आते हैं, बहुत सारे आप जैसे भाई बहन सेवा के लिए यहाँ आए, गृहस्थ में रहने वाले, कारोबार में रहने वाले, आपके जैसा ही व्यस्त जीवन है, जिम्मेवारियों का जीवन है, उन्होंने थोड़ा समय सेवा के लिए यहाँ दिया हुआ है, तो उनका भी अनुभव है, हमारा भी अनुभव है कि हर सेकेंड हम जब इस ईश्वर पिता को बहुत प्यार से याद करते हैं, शिव बाबा को साथ में रखते हैं, उनके साथ मन बुद्धि से उस मिलन का अनुभव करते हैं, तो परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है उसकी सारी शक्तियां आपके लिए उपस्थित हो जाती। और कितना भी बड़ा कोई प्रॉब्लम होगा, कितना भी बड़ा कोई विघ्न होगा, कितना भी कोई बड़ा परेशानी का समय होगा, उससे रास्ता दिखाई देता है। आजकल हम देखते हैं बिजनेस में भी कहा जाता है इंट्यूटिव डिसीशन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना इंट्यूशन, आपने सुना है ये शब्द, अंतर प्रेरणा, जब कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता तो कहते हैं इंट्यूशन विल वर्क, कहते हैं ना। तो इंट्यूशन का डिक्शनरी मीनिंग है डायरेक्ट एक्सेस टू ट्रूथ विदाउट द सपोर्ट ऑफ फैक्ट्स। आपको कोई उत्तर नहीं पता, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है यही करना है. तो स्पिरिचुअल, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? कनेक्शन विद द डिवाइन, टचिंग फ्रॉम द डिवाइन. परमात्मा से आपको टचिंग मिलेगी. आप अपने बिजनेस का, अपने कारोबार का जो निर्णय आपको लेना है, जैसे आपने बुद्धि को उस बुद्धिवानों की बुद्धि से कनेक्ट कर लिया, वो आपको गाइड कर लेगा. वो अपनी विजडम से आपको गाइड करेगा और हर निर्णय क्या हो जाएगा? हर निर्णय कल्याणकारी होगा. कोई गलती भी हो जाएगी, हम उसको बहुत प्यार से अपनी गलती उनके सामने रखेंगे, उससे भी बाहर निकलने के लिए वो आपको गाइड करेगा. तो ये बहुत सुंदर संबंध यहां से आप जोड़ के जाना, जोड़ के जाएंगे ना. रिजवान भाई ने कहा ना, बिजनेस करना ईश्वर के साथ. वैसे तो बिजनेस नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ प्राप्ति ही प्राप्ति है. आपको बस एक कदम आगे रखना है, उसको प्यार से याद करना है. वो तो परम पिता है, इसलिए वो तो अपने हजार भुजाओं से आपको सहयोग देने के लिए तैयार है. आप भी माता पिता हैं, तो आप अपने बच्चों को क्या करते हैं? क्या करते हैं? बच्चे का एक कॉल आपको आता है, आप क्या करते हैं? कितना भी बिजी मीटिंग हो, लेकिन बच्चे का कॉल आया. अब मीटिंग जैसे ही थोड़ा सा हल्की हो जाती है, चाय का टाइम आ जाता है, आप क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? क्यों बच्चे को फोन करेंगे? आपके दूसरे भी कॉल्स आए हैं, लेकिन वो सब आप मैसेज कर देंगे, मीटिंग के बाद शाम को कॉल करेंगे. बच्चे को क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? प्यार है. अच्छा, और साथ में जिम्मेवारी भी है, नहीं? तो आप देखिए, आप तो देह के माता पिता, इस एक जीवन यात्रा के माता पिता, आपकी कितनी जिम्मेवारी है उसके लिए. और परमात्मा तो हमारा अविनाशी माता पिता है, और वो ऐसा सर्वशक्तिवान है जो हर सेकंड वो हमारे लिए अवेलेबल है, उपस्थित है. आपका संकल्प का मैसेज गया, संकल्प का कॉल उसको गया, वो आपके लिए हाजिर है. लेकिन कनेक्शन जोड़ना बहुत जरूरी है, संबंध से वो समीपता का अनुभव करना बहुत जरूरी है. मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगी कि एक छोटा सा बच्चा है, तो आपने कहानी शायद पहले सुनी होगी, फिर भी मैं रिपीट करती हूँ. तो ये छोटा सा बच्चा है जो थोड़ा नटखट है. आजकल हम देखते हैं चिल्ड्रन हाइपर एक्टिव होते हैं, नटखट होते हैं, उनको हर जगह कुछ भी नया है, कुछ मिलता है तो इंक्विजिटिव होते हैं. तो ये बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ चर्च में आया है. अब चर्च में उनके मदर पेरेंट्स जो है वो उनका जो प्रेयर कर रहे हैं, बच्चा जो है अपने दूसरे छोटे छोटे और फ्रेंड्स हैं उनके साथ खेल रहा है. कुछ समय के बाद उसने देखा, बहुत समय हो गया, मम्मी डैडी अभी आए नहीं, क्योंकि उनका कुछ और कम्युनिटी सर्विस था, उनकी कोई मीटिंग थी. तो वो सभी चर्च से बाहर, हॉल से बाहर आकर कुछ कारोबार कर रहे थे, कुछ उनकी सर्विस एक्टिविटीज थी. ये बच्चा माता पिता को ढूंढते ढूंढते उस प्रेयर हॉल में चला जाता है. प्रेयर हॉल तो बहुत बड़ा है, वो अंदर अंदर जाता है, देखता है पूरा खाली है. फिर वहां एक दरवाजा देखता है, बाहर लिखा है नो एडमिशन. वो तो छोटा बच्चा है, वो तो अंदर चला जाता है. वहां अंदर देखता है कि बहुत मग्न होकर एक प्रीस्ट जो है प्रार्थना कर रहा है. तो बच्चा तो नटखट है, तो वो क्या करता है, जैसे वो प्रीस्ट हाथ जोड़कर जैसे वो प्रे कर रहे हैं, वैसे बच्चा भी वही पोस्चर में बैठ जाता है और बार बार उस प्रीस्ट को देखता रहता है. अब कुछ समय के बाद वो प्रीस्ट को जो है, फादर को समझ में आता है कि कोई है इस कमरे में, तो वो आंखें खोलकर देखता है बच्चे को. अब बच्चा तो थोड़ा नटखट है, तो वो बहुत गुस्से हो जाता है. वो कहता है तुम क्या कर रहे हो? तो बच्चा उसको पूछता है आप क्या कर रहे हो? तो उसको और गुस्सा आता है, फादर को कहता है मैं प्रेयर कर रहा हूं. तो बच्चा भी कहता है मैं भी प्रेयर कर रहा हूं. तो अब तो फादर को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है क्या प्रेयर कर रहे हो? तो ये बच्चा कहता है आप क्या प्रेयर कर रहे थे? तो वो बाइबल उठाकर फादर जो है उसमें सबसे जो डिफिकल्ट प्रेयर होती है वो सुनाता है. तो बच्चा जो है उसकी बारी आ गई, अभी उसको बताना है कि कौन सी प्रेयर. तो बच्चा भी बहुत कॉन्फिडेंस से ए बी सी डी जेड तक बोल देता है, छोटा है. अब वो फादर है और गुस्से हो जाता है, बोलता है तुम क्या समझते हो? बच्चा ये मजाक नहीं है, प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत उसको महत्व दिया जाता है, ऐसे नहीं मजाक कर सकते हो. तो बच्चा उसको एक बहुत अच्छी बात कहता है, बोलता है फादर आपकी सारी जो प्रेयर्स है ना, वो ए टू जेड के अक्षरों से ही बनी है. मैंने गॉड को कहा आपको जैसे जोड़ना है जोड़ दो. अर्थात ईश्वर के साथ सिर्फ वो शब्द जो है, या कोई बाह्य रूप से जोड़ने की बात नहीं है, मन से जोड़ना, दिल से जोड़ना, दिल से जो प्यार का अनुभव है ईश्वर के साथ, वो आपको ये प्रभु मिलन का आनंद देगा। और ऐसा आनंद जो आप हर क्षण अनुभव कर सकते हैं। हमें अभी जीवन में कोई भी परिस्थिति में मूंझने की दरकार नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमारा साथी है और उस साथ को सिर्फ हमें अनुभव करना है। तो यहां से राजयोग के द्वारा उस साथ को आप अनुभव करने की विधि सीख लेना। तो हम कुछ क्षणों के लिए उसका अनुभव करेंगे। दोपहर का समय है, भोजन की भी आपको खींच हो रही होगी, हम जल्दी भोजन करेंगे, लेकिन 2-3 मिनट के लिए उस परमात्म मिलन का अनुभव करेंगे। कुछ समय के लिए मन को हम इस आवाज की दुनिया से पार, कारोबार, परिवार, जिम्मेवारी, इन सब बातों से पार उस शांति की दुनिया में ले जाते हैं। मन की आंखों से देख रहे हैं कि मैं सुंदर आत्मा एक उड़ान भर रहा हूं। जैसे हम फ्लाइट से ऊपर उड़ते हैं और फिर नीचे की चीजें बहुत छोटी दिखाई देने लगती हैं, ऐसे ये आत्मा की उड़ान है। मन बुद्धि से देखें कि आप सुंदर दिव्य लाइट इस विश्व रूपी ग्लोब से पार जा रहे हैं। ये सुंदर रूहानी यात्रा जहां हम आवास की दुनिया से पार उस शांति की दुनिया में पहुंचते हैं। मन की आंखों से देखें, ये शांति की दुनिया सोनेरी लाल प्रकाश का ये सुंदर महातत्व, परम धाम, शांति धाम, जहां मुझ आत्मा के समान परम ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा विराजमान है। मन की आंखों से उस सुप्रीम लाइट को देखें, परमात्मा भी मुझ आत्मा के समान ही एक दिव्य लाइट है जिसका प्रभा मंडल चारों तरफ फैल रहा है। शिव बाबा परमात्मा पिता से वो प्रकाश की किरणें हमें प्राप्त हो रही है, वो सुप्रीम लाइट से प्रकाश की बाहें हमें अपने साथ समा लेती है। परमात्मा प्यार का सागर है, परमात्मा का वो असीम प्यार, परमात्मा की असीम शांति मेरे मन में, हृदय में समा रही है। पिता का ये सानिध्य कितना सुखदाई है। मैं अपने मन का सारा बोझ, चिंताएं, जो भी प्रश्न है, दुख है, अशांति है, वो सब कुछ परमात्मा पिता को सौंप देता हूं और अपने आप को हल्का महसूस करता हूं। परमात्मा का सीम प्यार मेरे अंतर मन में, हृदय में सुख का अनुभव करा रहा है, सुकून का अनुभव करा रहा है। मैं अपने आप को ईश्वर के सानिध्य में सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। मैं जानता हूं परमात्मा पिता सदा मेरे साथ है और ईश्वर पिता मुझे प्यार से कह रहा है, मीठे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। परमात्मा का वरदानों का हाथ मेरे मस्तक पर है। मैं ईश्वर पिता के छत्र छाया में सुरक्षित हूं, स्वस्थ हूं, खुश नसीब हूं। परमात्मा का ये असीम प्यार मेरे मन को शक्ति दे रहा है। परमात्मा मुझे अपनी सुकून से, अपनी शक्तियों से भरपूर कर रहा है। मैं जैसा हूं ईश्वर को बहुत प्यारा हूं। परमात्मा मुझे अपने आप से भी प्यार करना सिखलाता है। ईश्वर मुझे कह रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तुम मेरे लकी और लवली चाइल्ड हो। अपने आप को भी हमेशा इस शुभ भावना से, शुभ कामना से स्नेह देना ईश्वर मुझे सिखा रहा है। परमात्मा की असीम शक्तियां एक सुरक्षा कवच बनकर मेरे साथ है। अपने आप को इस परमात्म प्यार में भरपूर महसूस करते हुए, ब्लेस्ड फील करते हुए, हम फिर से अपने आप को यहां इस संगठन में ले आते हैं। मन से हम पुनः अपने आप को यहां इस हॉल में देख रहे हैं। आंखें अगर बंद है तो आंखों को खोल देते हैं, लेकिन अंतर मन में परमात्मा का प्यार समाया हुआ है। अंतर से हम महसूस करते हैं कि अब वो मेरे साथ है। मैं जब भी उसको प्यार से याद करता हूं तो सर्वशक्तिवान मेरा साथी बन जाता है और हर कार्य सहज कर देता है। ओम शांति शांति।
दुनिया की सबसे बड़ी प्राप्ति भगवान, आज उनका सत्य परिचय पाकर